पृष्ठ संख्या 111 अध्याय 8 कालानुक्रम। कालानुक्रम की किसी न किसी प्रकार की रूपरेखा पुरातात्विक अध्ययन एवं अनुसंधान के लिए अत्यावश्यक है। पुरातात्विक विपुल ज्ञान राशि के ऐतिहासिक महत्व को तभी ठीक से आंका जा सकता है जबकि इसका संबंध एक सुस्पष्ट एवं क्रमबद्ध समय सारणी से स्थापित किया जा सके। अतीत को वास्तव में अतीत इसलिए कहा जाता है क्योंकि कालमान में उसकी विशिष्ट स्थिति होती है। पुरातत्व में प्रधान रूपेण अज्ञात नामा व्यक्तियों और संस्कृतियों का अध्ययन किया जा सकता है, इसीलिए इनके कालक्रम निर्धारण की जटिल समस्या का समाधान करने की आवश्यकता होती है। बिना कालक्रम के किसी संस्कृति के तकनीकी, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक तथा कलात्मक पक्षों की जानकारी का कोई विशेष महत्व नहीं है। किसी संस्कृति तथा सभ्यता का महत्व बहुत कुछ उसके देश और काल के परिप्रेक्ष्य में होता है। जैसे यह ज्ञात करना बहुत आवश्यक है कि प्राचीन भारत की सैंधव सभ्यता की विश्व की अन्य समकालिक सभ्यताओं के संदर्भ में क्या स्थिति है। कालक्रम की दृष्टि से विश्व की अन्य प्राचीन सभ्यताओं में इसका स्थान कहाँ पर है, इसकी सापेक्ष और निरपेक्ष तिथियां क्या है और ये इन्हीं की तरह के अन्य प्रश्न पुरातत्वविद अपने सीमित एवं अपेक्षाकृत अत्यल्प साक्ष्यों के आधार पर प्रथमतः सापेक्ष तिथियां निर्धारित करने का प्रयास करते हैं। तत्पश्चात यथासंभव निरपेक्ष तिथियां ज्ञात करने का प्रयत्न किया जाता है। सही एवं प्रामाणिक तिथियां ज्ञात करने के उद्देश्य से एक ही संस्कृति अथवा पुरावशेष की दोनों विधियों से तिथियां निर्धारित की जाती है। कालक्रम निर्धारण की विधियां कालानुक्रम क्रोनोलॉजी निर्धारण की विधियों के प्रमुख दो भेद किए जाते हैं, एक सापेक्ष तिथि विधि रिलेटिव डेटिंग, दो निरपेक्ष तिथि विधि ऑब्सोल्यूट डेटिंग। सापेक्ष तिथि विधि सापेक्ष तिथि विधियां प्रायः पुरातत्व में आरंभ से ही विशेष प्रचलित रही हैं। जब तिथि सौर वर्षों में न देकर किसी पुरावशेष अथवा घटना के संदर्भ में दी जाती है, पृष्ठ संख्या 112, तब उसे सापेक्ष तिथि कहा जाता है। जैसे क पुरावशेष, ख पुरावशेष से प्राचीनतर है लेकिन च पुरानिधि से नवीनतर है। इस प्रकार सापेक्ष तिथि क्रम दो या दो से अधिक पुरावशेषों अथवा संस्कृतियों की आपस में तुलना पर आधारित होता है। किसी पुरास्थल के उत्खनन के फलस्वरूप विभिन्न आवास कालों सक्सेसिव ऑक्यूपेशन के मध्य सापेक्ष संबंध स्थापित किया जा सकता है। यह भी ज्ञात किया जा सकता है कि किसी पुरास्थल विशेष पर कितनी बार पुनर्निर्माण हुआ अथवा अग्निकांड एवं बाढ़ का प्रकोप हुआ। इन घटनाओं को घटित हुए कुल कितने वर्षों का समय व्यतीत हो गया है। सापेक्ष विधि से निश्चित रूप से यह बतलाना संभव नहीं है। प्रमुख सापेक्ष तिथि निर्धारण विधियों में स्तरीकरण, प्रारूपकी, अन्योन्याश्रय कालानुक्रम, भू आकृति विज्ञान विधि, पुरा जैविकी, फ्लोरीन विश्लेषण तथा पुरा पुष्प राग विश्लेषण विधि आदि की गणना की जा सकती है। स्तरीकरण पृथ्वी के भूपटल की बनावट के विभिन्न स्तरों के निश्चित अनुक्रम को स्तरीकरण की संज्ञा दी जाती है। स्तर विन्यास स्ट्रेटिफिकेशन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो पृथ्वी के भूपटल पर निरंतर सक्रिय एवं गतिशील रही है और आज भी यह मिट्टी, बालू, कंकड़ आदि के संचय से पृथ्वी के स्तरों के निर्माण में जल तथा वायु प्रमुख रूप से सहायक रहे हैं। स्तरीकरण का सिद्धांत पुरातत्व ने भूतत्व विज्ञान से ग्रहण किया है। भूपटल पर प्राकृतिक रूप से निर्मित स्तर समकालिक होते हैं। ऊपर के स्तर नवीन तथा नीचे के स्तर सामान्य परिस्थितियों में प्राचीन होते हैं। जिन प्राकृतिक स्तरों का पुरातत्व में अध्ययन किया जाता है वे भूतात्विक दृष्टि से अत्यंत नवीन कहे जा सकते हैं। पुरातत्व में प्राकृतिक नवीन स्तरों के अतिरिक्त मानव निर्मित स्तरों का अध्ययन मुख्यतः होता है। पृथ्वी पर जब मानव के चरण पड़े तब प्रकृति को स्तर निर्माण में एक सहयोगी प्राप्त हो गया। मनुष्य ने जहाँ कहीं पर निवास किया उन स्थलों पर उसके आवास के प्रमाण शनै शनै संचित होकर स्तरित होने लगे। जिस स्थल पर मनुष्य अपेक्षाकृत लंबे समय तक रहा, वहां पर पृथ्वी के धरातल के ऊपर एक टीला बन गया। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि जिस स्थल पर मानव अपना जीवन व्यतीत करता है, उस स्थल पर उपकरणों, औजारों एवं उच्छिष्ट भोज्य पदार्थों के रूप में अपनी संस्कृति की कुछ स्मृतियां छोड़ जाता है, जिन्हें प्रायः पुरानिधियां कहा जाता है। किसी स्थान विशेष पर जिन स्तरों का निर्माण मानव के निवास के फलस्वरूप हुआ, उन्हें पुरातात्विक स्तर कहा जाता है। स्तर विन्यास के संबंध में मार्टिमर व्हीलर के इस कथन को उद्धृत किया जा सकता है कि स्तर विन्यास का पृष्ठ संख्या 113 कोई सुनिश्चित नियम नहीं है। द फर्स्ट रूल अबाउट स्ट्रेटिफिकेशन इज दैट देयर इज नो इनवेरिएबल रूल। स्तर विन्यास की प्रक्रिया एक अत्यंत जटिल एवं पेचीदी क्रिया है। कितने मोटे स्तर का निर्माण कितने समय में हुआ होगा, यह कहना कठिन है। मानव के सांस्कृतिक उपादानों का स्तर के निर्माण में प्रमुख योगदान रहा है। पुरापाषाणिक काल के पतले स्तरों के निर्माण में अपेक्षाकृत अधिक समय व्यतीत हुआ होगा। इस बात की प्रबल संभावना है कि ऐतिहासिक काल के अपेक्षाकृत मोटे स्तरों का निर्माण कम समय में ही हुआ हो। मानव के क्रियाकलापों के फलस्वरूप स्तरों के निर्माण के विपरीत एक अन्य प्रक्रिया के सक्रिय होने की भी संभावना रहती है। गड्ढा खोदना, नाली, नहर एवं सड़क निर्माण आदि ऐसे कार्य हैं जो स्तरित जमाव को नष्ट कर देते हैं। अतीत के ये कार्य भी पुरातात्विक प्रमाण माने जाते हैं, जो स्तरों के अध्ययन में इन क्रियाकलापों के परिणामों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। रेखाचित्र वन पूरा स्थल का स्तरीकरण। भूतत्व विज्ञान की भी भांति पुरातत्व में भी स्तरीकरण का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। पीट रिवर्स 1835 से 1902 नामक पुराविद ने पुरातात्विक स्तरीकरण के वैज्ञानिक अध्ययन एवं विवेचना की नींव मिस्र में डाली थी। पीट रिवर्स का यह अभिमत आजकल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य है। भारत में पुरातात्विक स्तरीकरण के सिद्धांत को प्रतिष्ठित करने का श्रेय मार्टिमर व्हीलर को है। व्हीलर के पूर्वज जॉन मार्शल समुद्र की सतह के आधार पर स्तरों का अनुक्रम निर्धारित करते थे, जो एक अवैज्ञानिक दृष्टिकोण था। स्तरीकरण की सहायता से विभिन्न सभ्यताओं के क्रम तथा किसी सभ्यता के क्रमिक विकास के संबंध में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यदि किसी स्तर से ऐसे पुरावशेष प्राप्त हों जिनका पृष्ठ संख्या 114 कालानुक्रम पूर्व ज्ञात हो या स्तरों की अवसादन दर की जानकारी हो, तो स्तरीकरण का महत्व विशेष रूप से बढ़ जाता है। स्तर संबंधी साक्ष्य वास्तव में प्रमुख तीन प्रकार के होते हैं। एक ऐसे स्तर जो समकालीन होते हैं, दो जो अविच्छिन्न एवं सतत अनुक्रम में जमा हुए हैं, तीन जो समय के अंतराल से निर्मित हुए हैं। मानव के आवास तथा टीलों का उत्खनन करते समय स्तर विन्यास के विवेचन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। विभिन्न स्तरों को पहचानने और उनका एक दूसरे के साथ पुरावशेषों की प्राप्ति के आधार पर तिथिक्रम निर्धारित करने का प्रयास किया जाता है। कुछ स्तर समकालीन होते हैं, कुछ पहले के और कुछ अधिक बाद के होते हैं। विभिन्न स्तरों लेयर्स के आधार पर ही किसी पुरास्थल का पुरातात्विक इतिहास लिखा जाता है, इसलिए उत्खननकर्ता को उन्हें पहचानने की शीघ्रता नहीं करना चाहिए। पुराविद को सामान्य कार्यकर्ता से भी इस संबंध में विचार विमर्श करना चाहिए। किसी पुरास्थल के गर्भ में अतीत का न जाने कितने वर्षों का इतिहास छिपा हुआ है। इतिहास की प्राचीन प्रचुर रत्न राशि पुरास्थल के अंदर पुरावशेषों एवं पुरानिधियों के रूप में अंतर्निहित है, जिसे अनुभवी उत्खाता धैर्य तथा अपनी दक्षता के साथ उस स्थल का उत्खनन करके विश्व के समक्ष प्रस्तुत करता है। स्तरों का विवेचन उनके रंग, मिट्टी की बनावट तथा उनमें प्राप्त पुरावशेषों आदि के आधार पर किया जाता है। कभी कभी धूप के कारण इन स्तरों की मिट्टी में भिन्नता ढूंढना बड़ा कठिन हो जाता है। ऐसी स्थिति में मिट्टी को चाकू अथवा छुरी से छील कर उस पर पानी के छींटे देकर विभिन्न स्तरों को अलगाया जा सकता है। यदि मिट्टी सूखी और ठोस है, तो पानी जल्दी सूख जाएगा, और यदि मिट्टी में थोड़ी बहुत आर्द्रता है तो पानी देर में सूखेगी। विभिन्न समयों और प्रकाश में भी स्तरों का अध्ययन उपयोगी सिद्ध हुआ है। यह कार्य धैर्य तथा लगन के साथ करने की आवश्यकता है। उत्खनन में कैसे कैसे स्तर प्राप्त होते हैं, डेटम रेखा से उसकी गहराई नाप कर वहां पर स्तर का नंबर लगा देना चाहिए। प्रत्येक स्तर से प्राप्त होने वाले पुरावशेषों को भी अलग रखना चाहिए। गहराई के आधार पर स्तरों को नहीं निर्धारित किया जा सकता है। उत्खाता के लिए यह आवश्यक है कि वह तब तक उत्खनन करे जब तक कि अप्रयुक्त मिट्टी प्राप्त न हो जाए। उत्खनित खंतियां में सभी स्तर अथवा कालों के जमाव एक ही स्थान पर नहीं मिलते हैं। उनके समाधान के लिए संश्लिष्ट अनुभाग कंपोसाइट सेक्शन की आवश्यकता होती है। कभी कभी चूहों के बिलों, पेड़ की जड़ों तथा प्राकृतिक उथल पथल के फलस्वरूप स्तरों के क्रम विन्यास की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ऐसी स्थिति में भी सावधानी अपेक्षित है। पृष्ठ संख्या 115, रेखाचित्र 2, उत्खनित अनुभाग का रेखाचित्र। संक्षेप में स्तरीकरण का सिद्धांत यह है कि यदि भूगर्भिक उथल पुथल नहीं हुआ है तो सबसे निचले स्तर में प्राप्त पुरावशेषों, प्राचीनतम एवं सबसे ऊपर के स्तर से प्राप्त होने वाले पुरावशेष नवीनतम होंगे। सांस्कृतिक पुरावशेष किसी स्थल के विभिन्न स्तरों के क्रम को निर्धारित करते हैं। विभिन्न स्तरों से प्राप्त वस्तुओं की क्रमवार एक सारणी बनाकर उनके क्रम का विश्लेषण किया जा सकता है। स्तरों के क्रमांक नंबर प्रायः ऊपर से नीचे को लगाए जाते हैं। सांस्कृतिक कालों का अनुक्रम सदैव नीचे से ऊपर को निर्धारित किया जाता है। सांस्कृतिक कालों के क्रमांक रोमन अंकों 1, 2, 3 आदि में प्रायः रखने की संस्तुति की जाती है। रेखाचित्र 3, सोपान पथ उत्खनन। पृष्ठ संख्या 116, प्रारूपकी। प्रारूपकी के अंतर्गत पुरावशेषों के विशिष्ट आकार प्रकार के आधार पर सापेक्ष तिथियां निर्धारित की जाती है। समान आकार प्रकार एवं एक जैसी तकनीकी प्रविधि से निर्मित पुरावशेषों को सामान्यतः समकालिक माना जा सकता है। पुरावशेषों के प्रारूप अपने आप में किसी प्रकार की तिथि नहीं प्रकट करते हैं, लेकिन उनमें यदि एक निश्चित क्रम में परिवर्तन एवं तकनीकी विकास परिलक्षित होता है तो उनकी सापेक्ष तिथि निर्धारित की जा सकती है। प्रारूप प्रणाली का इतिहास 19वीं शताब्दी ईस्वी में प्रारंभ हुआ। इसके पूर्व ईसाई धर्माध्यक्षों की दृष्टि में इस पृथ्वी पर मानव के इतिहास की प्राचीनता 4004 ईसा पूर्व से पहले की नहीं मानी जा सकती है थी। आर्क बिशप असर ने बाइबिल के धार्मिक आख्यानों के आधार पर इतिहास की पौराणिक रूपरेखा प्रस्तावित की थी। 19वीं शताब्दी के प्रथमार्ध में सन 1816 में डेनमार्क के राष्ट्रीय संग्रहालय के संग्रहाध्यक्ष सीजे थॉमसन ने सर्वप्रथम मानव के इतिहास की एक तकनीकी रूपरेखा प्रस्तुत किया था। उसने मानवकृत पुरावशेषों एवं पुरानिधियों को तकनीकी आधार पर 1 पाषाण काल, 2 कांस्य काल और 3 लौह काल, इन तीन कालों में वर्गीकृत किया था। इन तीनों कालों में पूर्वापर क्रम भी स्वीकार किया गया। उसके पश्चात यह विभाजन किंचित परिवर्तन, परिवर्धन एवं परिष्कार के साथ प्राय सर्वत्र लोकप्रिय हुआ। पाषाण काल सभी जगह पहले हुआ, लौह काल सबसे बाद में तथा धातु कांस्य काल इन दोनों के मध्यवर्ती काल में हुआ, लेकिन सभी देशों में ये काल समकालिक नहीं थे। पाषाण काल के उपकरणों का विभिन्न कालों एवं उपकालों में वर्गीकरण प्रधान रूपेण प्रारूप प्रणाली पर आधारित है। पूरा पाषाण काल से लेकर नव पाषाण काल तक के उपकरणों का विभाजन तकनीकी वैशिष्ट के आधार पर किया जाता है, जो प्रारूप पद्धति का एक प्रमुख आधार है। प्रारूप प्रणाली का उपयोग मृदभांडों के अध्ययन में भी किया जाता है। नवपाषाणिक काल एवं इसके बाद के कालों से संबंधित पुरास्थलों पर मिलने वाली पुरानिधियों में मृदभांडों के टुकड़ों की संख्या सर्वाधिक होती है। हस्तनिर्मित मृदभांड चाक निर्मित मृदभांडों से प्रायः प्राचीनतर माने जाते हैं। मृदभांडों के विशिष्ट आकार प्रकारों का वर्गीकरण करके सापेक्ष तिथि प्रस्तावित की जा सकती है। इसके अतिरिक्त मृदभांडों में प्राप्त अलंकरण, चित्रण तथा उत्कीर्णन आदि निर्माताओं की सुरुचि एवं सौंदर्य बोध के परिचायक होने के साथ ही साथ सापेक्ष तिथिकरण में भी सहायक होते हैं। फ्लिंडर्स पेत्री ने मिस्र के प्राग राजवंश काल की कब्रों से प्राप्त मिट्टी के बर्तनों की बनावट तथा उनसे आकार प्रकार आदि उदाहरणार्थ बर्तनों के हाथों हैंडल्स की बनावट की दृष्टि से मृदभांडों का प्रारूपिकी के आधार पर सापेक्ष अनुक्रम निर्धारित किया था। इस प्रकार मृदभांडों की बनावट पृष्ठ संख्या 117 आदि के सूक्ष्म अध्ययन से सापेक्ष तिथि निर्धारण की संभावना की ओर उन्होंने पुरातत्ववेत्ताओं का ध्यान सर्वप्रथम आकर्षित किया। विगत 50 वर्षों में भारत के अनेक भागों में अनेक ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों के अस्तित्व की जानकारी प्राप्त हुई है। इन संस्कृतियों का सापेक्ष कालानुक्रम मृदभांडों के तुलनात्मक अध्ययन पर मुख्यतः आधारित है। सिंधु सभ्यता के लाल मृदभांड तथा इसके पश्चात के काल में प्रचलित चित्रित धूसर मृदभांड तथा उत्तरी काले चमकीले मृदभांडों का कालक्रम मिट्टी के बर्तनों के आकार प्रकार अलंकरण आदि के विवेचन पर प्रधान रूपेण अवलंबित है। प्रारूपिकी से किसी काल विशेष के आंतरिक विकास मात्र की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। विकास के पूर्वापर क्रम को समझने के लिए स्तरीकरण की पद्धति का सहारा लेना पड़ता है। अन्योन्याश्रय कालानुक्रम, जब अज्ञात पुरावशेषों, स्तरों, सांस्कृतिक कालों तथा पुरास्थलों का कालक्रम किसी ज्ञात पुरावशेष या पुरावशेषों के आधार पर निर्धारित किया जाता है तो उसे अन्योन्याश्रय कालानुक्रम कहा जाता है। मिट्टी के बर्तनों के टुकड़ों, मोहरों तथा सिक्कों एवं अन्य पुरावशेषों और पुरानिधियों आदि के अध्ययन से इस प्रकार का तिथिक्रम निश्चित किया जा सकता है। सांस्कृतिक संपर्क, आक्रमण प्रवजन माइग्रेशन तथा व्यापार आदि के फलस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों की समकालिक संस्कृतियों के बीच परस्पर संपर्क सूत्र स्थापित होने की संभावना व्यक्त की जा सकती है। यदि समकालिक दो संस्कृतियों के मध्य टिकाऊ वस्तुओं का आदान प्रदान हुआ हो तो इस प्रकार के साक्ष्य आदान प्रदान हुआ हो तो